Oh. आश्रमों से अभवत उत्पन्न हुआ पुत्र पुत्र सोम चंद्रमा अमृतमय स्निग्ध किरणों से युक्त केल निसंदेह विप्र ब्राह्मणों का औषधि दवाओं का कुट गणाना तारों का ब्रह्मना ब्रह्मा द्वारा कल्पित नियुक्त किया गया पति परम निदेशक संचालक अनुवाद करता हूं श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की पीछे द्वारा ये अत्री के हर्ष आश्रमों से सोम नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ जो स्निग्ध किरणों से युक्त था। ब्रह्मा जी ने उसे ब्राह्मणों औषधियों और नक्षत्रों का निदेशक तात्पर्य बढ़ता हूं क्या ध्यान को सुनिए। वेदों के अनुसार सोम या चंद्रदेव की उत्पत्ति भगवान के मन से हुई। चंद्रमा मनसो जाता किंतु यहां पर सोम को पत्नी के अश्वों से उत्पन्न बदलाया गया है। यह वैदिक सूचना के विपरीत प्रतीत होता है किंतु वास्तव में ऐसा है नहीं, क्योंकि चंद्रमा का यह जन्म किसी दूसरे कल्प में हुआ जान पड़ता है। जब आंखों में हर्ष के अश्रु आते हैं तो वे स्निग्ध होते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं दृघव्य आनंदा शुभ अतः एवामृतमया, या दृघव्य शब्द जाता है आनंद के अश्रुओं से, इसीलिए चंद्रमा अमृतमय कहलाता है अर्थात स्निग्ध किरणों से युक्त। श्रीमद भागवत के चतुर्थ स्कंध में 4:1:15 में श्लोक पाया है अत्रे पतन्य सूया यज्ञे सुन दत्तम दुर्वास समीक्षी ब्रह्म संभवान। इस श्लोक से पता चलता है कि अत्रे पत्नी अनसूया के गर्भ से 3 पुत्र उत्पन्न हुए सोम दुर्वासा तथा दत्तात्रेय। ऐसा कहा जाता है कि अनुसूया अत्रि के अश्रुओं से गर्भवती हुई। ओम ज्ञातिवृद्धस्य Yeah. हरे कृष्ण
हरे कृष्ण।
श्लोक संख्या एक, श्री सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से कहा, हे राजन, अभी तक आपने सूर्य वंश का विवरण सुना है, अब सोम वंश का अत्यंत कीर्तिप्रद एवं पावन वर्णन सुनिए। इसमें एल पूर्वा जैसे राजाओं का उल्लेख है जिनके विषय में सुनना कीर्तिप्रद होगा। श्लोक संख्या दो, तावान विष्णु गर्भोदक शायद विष्णु सहस्त्र शीर्ष पुरुष भी कहलाते हैं, उनके नाभि रूपी सरोवर से एक कमल निकला जिसमें ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी का पुत्र अत्रि अपने ही पिता के समान निरूपित था। अभी तक आपने चर्चा सुनी सूर्यवंश का, सूर्यवंश का क्या है? सूर्यवंश किस बात को सिग्निफाई कर रहा है, क्या बात हो सकता है कि जो हियरार्की अर्थात जो संतान से संतान से संतान से संतान सूर्य देव से उत्पत्ति, उनकी उत्पत्ति का जो मूल है ओरिजिनल है वो सूर्य है, तो वो सूर्य वंश का नाम है। उसी सूर्य वंश में आपने जो है राम जी के बारे में सारी विश्वास को राम जी सारी चर्चाएं। अब आती है चर्चा चंद्रवंश के बारे में, जो संगति जो संतान की उत्पत्ति चंद्रमा के वंश में हो रही है उसके लिए सबसे पहले जानना यह जरूरी है कि चंद्रमा का प्राकृत्य कैसे हुआ। यहां जो है चर्चा आ रही है कि चंद्रमा का प्राकृत्य कैसे होगा। थोड़ी सी चर्चा करते हैं बिगनिंग में, इसी चंद्रमा के वंश के अंदर सारे कौरव वंश का इतिहास है, इसी चंद्रमा के वंश के अंदर कौरव और पांडव का इतिहास है, इसी चंद्रमा के वंश के अंदर कुरु और कुरु इन सब का इतिहास है, इसी चंद्रमा के वंश के अंदर दुष्यंत और शकुंतला। तो चंद्रमा के वंश की चर्चा है, थोड़ा सा पास्ट में जाते हैं फिर अत्रि मुनि के आएंगे। वंशपायन ने जन्मेजय जी को कथा सुना है महाभारत के लिए कि ब्रह्मा जी के दाहिने अंगूठे से दक्ष प्रजापति, जिसको प्राचे तो दक्ष भी कहते हैं, उनका प्राकृत्य होता है। सुना दाहिने अंगूठे से प्रजापति दक्ष का प्राकृत्य हो गया, ये आंसुओं से प्रकट हो गए आज के श्लोक में। अभी हम लोग जो है शास्त्रों पर विश्वास नहीं करते, पर आजकल क्या हो रहा है ये सोचा आपने? स्टेम सेल से भीड़ बना, टॉली भीड़ बनी थी कि नहीं बनी थी? कितने लोगों ने सुना टॉली भीड़ के बारे में, किससे बनी थी? उसकी जो उत्पत्ति हुई थी किससे हुई थी? स्टेम सेल। इसका मतलब है कि स्टेम एक सेल का ग्रोथ जो है उसके द्वारा आप एक जीवित की रचना कर सकते हैं, तो अंगूठे से तक प्रजापति क्यों नहीं बने? सोचिए करता है तो लोग बैठे किताब में भी ऐसी लिखते हैं जड़ों शड़ों लिखती हुई है, बेकार की बातें हैं, जो फायदा है बात ऐसी होता है कि कौन चीज जो जमाने में थी उसी का आज से कहते हैं रिप्लिका आज की तारीख में हो रहा है कि स्टेम सेल से आप जो है एक जीव की रचना कर रहे हैं। पर स्टेम सेल मतलब लाइफ सेल है, डेड केमिकल से नहीं, केमिकल्स को इकट्ठा करके उसमें लाइफ नहीं डाली जा सकती, लाइफ डालने के लिए लाइफ ही जरूरी है। कितने लोगों ने प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ा है, पुस्तक पढ़ी है लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, उन्होंने नहीं पढ़ी है, पढ़ लिया। बहुत बढ़िया डिस्ट्रक्शन है, लाइव ट्रांसफॉर्म लाइफ, कठिन सी किताब है, बहुत अच्छी किताब है, जो पढ़ने में बड़ी दिक्कत हो, बड़ा भारी लगे, लेकिन वो लाइव ही लाइव से आती है। यहां पर जो है, अब आज की तारीख में नया डेवलपमेंट क्या होगा, नया डेवलपमेंट क्या होगा कि बहुत सारी बीमारियां, रोग, उनका इलाज भी स्टेम सेल से होगा। अब पढ़िए, ऊपर पढ़िए, गूगल खोज करो, सब चलिए आप मिलेगा। जो बीमारियां जिनके बारे में हम सोचते हैं कि ठीक नहीं हो सकती, वो अंदर डिप्रेशन, हड्डियों के अंदर जो महरो होती है, जो उसका थक हो रहा है, वो डिप्रेस हो जाता है, काम नहीं करता है, आप स्टेम सेल स्टोर किए हुए लगाते हैं तो वो अंदर डेवलप हो जाती है, दोबारा से काम करने की। बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारी बीमारियां हैं जिसके अंदर स्टेम सेल जो है वो कार्य करते हैं। मतलब आप देखेंगे कि जो पुराणों के अंदर, इतिहास के अंदर, भागवत में जो चर्चा की गई है, वो चर्चा की सत्यता कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आज भी स्थापित हो रही है। यहां चर्चा आ रही है कि दक्ष प्रजापति जो है, उनकी प्रथम पत्नी का नाम था वीरणी। एक हजार पुत्र हो गए, 1000। अब उन 1000 पुत्रों को मिल गए नारद मुनि। नारद मुनि ने अपना कार्य कर दिया। क्या कार्य किया? भैया राजपाट छोड़ो और भगवान की भक्ति में लग जाओ। तो हजार के हजार जो है वन में चले गए। अब उसके बाद जो है दस प्रजापति की 50 ने कहा कि विवाह करेंगे और जो प्रथम पुत्र होगा जिसके, उसको मैं अपना लूंगा। 13 कन्याओं का विवाह किया कश्यप मुनि से, उनमें से एक थी अदिति, इसकी माता आदित्यों की, दिति किसकी माता है, धनु किसकी माता, धानु की, अलग अलग गांव से अलग अलग संगतियां। अदिति के जो 12 पुत्र हुए उनमें एक थे रसवान। रसवान कौन है? सूर्यदेव। सूर्यदेव के जो सबसे बड़े पुत्र हैं उनका नाम क्या है? मनु। तो सबसे छोटे का नाम क्या है? एक मनु में तो दूसरा तनु होगा, आज की बात है। सबसे छोटे हैं ये राज। एक पुत्री हुई, इसका नाम क्या है? यमी अर्थात यमुना जी। जो मनु हैं उनके 10 पुत्र हैं। वे धृषानु नरिष्यंत इक्ष्वाकु नाभाग कारु शर्याति इला कन्या शद्र और नाभाग अरिष्ट। 50 और पुत्र हुए वापस में लड़ते मर। अब इनमें से एक है इला कन्या। इला कन्या जो है अल्टरनेट डे पे पुरुष और स्त्री बन जाएंगे, सोच सकते हैं? कभी पुरुष कभी स्त्री, कभी पुरुष कभी स्त्री। तो वो मदर एंड फादर का रोल प्ले करती है और पुत्र होता है पुरुर्वा। चर्चा है किसके बाद उतना भी चर्चा है किसके पुरुष जो पुरु भी है पौरव भी है। बहुत सुंदर है, समस्त यूनिवर्स के राजा हैं। उनके ऊपर स्वर्ग लोक की जो मुख्य अप्सरा है उर्वशी, वो आकर्षित हो जाए, आकर्षित हो जाए। वो स्वर्ग लोग छोड़ते हैं, ब्रह्म लोग उसको जो है निकासी कर देते हैं, वो युवा पे अट्रैक्ट होके उनके साथ जो है वो 13 द्वीपों पे राज्य करते हैं, 13 कॉन्टिनेंट्स। 6 पुत्र होते हैं, आयु, विमान, अमावसु, जड़ायु, वनायु और शतायु। उर्वशी जो है वो एक स्टेज आती है कि वापस स्वर्ग लोग चली जाती है, उनको छोड़ क्यों छोड़ जाती है, इसलिए छोड़ जाती है, उसने एक शर्त बांधी होती है। शर्त यह है कि मेरे ये जो प्यारे भेड़ के बच्चे हैं इनको आप संभाल के रखिएगा, खोने नहीं दीजिए। और फिर रेड करती है कि मैं अगर आपको नग्न अवस्था में देख लूंगी तो मैं आपको छोड़ दूंगी। अब ये देवता लोग हैं, देखते हैं कि जो हुआ है ऐसा ना हो कि हमारा सिंहासन ही बना रहे, वो प्लान करते हैं। और प्लानिंग के अंदर क्या है, उसके दोनों लड़के बच्चे को आए, रात्रि का समय है, पुरोर्वा जो है उनको पोसती है, मेरे पेट के गहने की आवाज आती है, बच्चों के बच्चे को खाने जा रहे होते हैं, तो कहते हैं कैसा है दोनों सब पुरुष है, मेरे मैंने जो छोटा सा काम किया था वो नहीं कर पाया, मस्त सोया था। ये बात जो है पुरोर्वा सुनते हैं, क्योंकि वो नर्म अवस्था में थे, तो जैसे ही जो है वापस आते हैं और उसी नर्म अवस्था में देख लीजिए तो वो छोटे छोटे। उसके बाद उनकी फिर एक बार मुलाकात होती है, उसे बहुत प्लीट करते हैं, बड़ी रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, तुम्हारे साथ जीवन व्यतीत करना चाहता हूं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो कहते हैं कि आप मेरे साथ जो है वर्ष में एक रात्रि रहता है, एक रात्रि। 6 संतान में एक है आयु, इसका विवाह होता है स्वाभानवी के साथ, उससे फिर होते हैं 5 पुत्र, महुष, कंशर्मा, राजीव, गौय, अनेना। महुष की कथा सुनिए आपने, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है महुष का, जब आप सोम की कथा सुनेंगे, चंद्रमा की कथा सुनेंगे, जब जानेंगे उससे कैसे बुद्ध की उत्पत्ति हुई है, बृहस्पति की पत्नी को उसने जो है उठा लिया था, और तारा उससे ग्रहण के जो है बुद्ध की उत्पत्ति होती है, ये सारी कथा सुनेंगे तो आप जानेंगे कि सूर्य वंशियों के अंदर एक मर्यादा थी, इसलिए भगवान राम भी मर्यादा पुरुषोत्तम मिला। आप चंद्र वंशियों की कथा सुनेंगे तो उसके अंदर जो है भोग विलास है, मर्यादा नहीं। मैं कोर्ट करूंगा लोग एग्जाम्पल हो, चंद्रवंशियों के अंदर जो है इंद्रवृत्ति और भोग विलास ही मुख्य कार्य रहा। भूष ने स्वर्ग लोक में कब्जा कर लिया है, असल दृष्टि से बोला है मेरी पार्टी का दृष्टि, तो मेरे एक ऋषि जो है थोड़े छोटे थे तो वो जो है नहीं ले जा पा रहे थे, तो उसने उनको पैर से मारा, ऋषियों ने उनको श्राप दिया कि गौ मुक्ति हो जाए। उसी महुष के 6 पुत्र होते हैं, यति, अयाति, संयाति, आयाति और अयति। उसमें यजाति की कथा आपने पढ़ी होगी, क्या स्टोरी है यजाति की, यजाति ने दो पत्नियां हैं, एक है देवयानी, शुक्राचार्य की पुत्री है, रामनी है, और दूसरी है शर्मिष्ठा जो कि राजा वृषभवर्मा की पुत्री है। देवयानी जो है उनसे उनके 2 पुत्र होते हैं, यदु और पुरवसु। यदु से चला है यदु वंश, इसका है यदु वंश, इसलिए मशहूर है, इसलिए फेमस है। बोलो जोर से, भगवान श्री कृष्ण। और तो रुसु जो है वो यवन, जो शर्मिष्ठा है पुष्पर्वा की पुत्री, उससे उनके जो है तीन पुत्र, दयु अनु और पुरु। पहले वाली जो है ब्राह्मणी थी, ये कौन है, राजा की पुत्री है। गृहु जो है इससे आते हैं भोजवंशी, भोजवंशी। अनु से आते हैं मल्लेश, और पुरु से आते हैं पौर। इसमें जो पुरु है उसका विवाह होता है कौशल्या से, उनसे आते हैं जन्मेजय, पहले जन्मेजय, परीक्षित वाले नहीं, उससे पहले उनकी पत्नी बनती है अनंता, और वो एक पर जो है संतति चलती आती है, जगह आती है, स्थान आता है जहां पे पुत्र होता है इलिन। शादी होती है धन्वंतरी से, पांच पुत्र होते हैं, मुख्य है दुष्यंत, उसकी कथा आपने सुनी, दुष्यंत शकुंतला सब भोग विलास, स्त्री को देखा आकर्षित, कुछ सूझा नहीं, सब भूल गए। उनसे पुत्र होते हैं भरत, पत्नी होती है सुनंदा, पुत्र होते हैं युमन्यु, पति होती है विजया, पुत्र होते हैं स्त्रोत्र, पत्नी होती है सुवर्णा, पुत्र होते हैं हस्ती। हस्ती किस लिए फेमस है, उन्होंने हस्तिनापुर बसाया। हस्तिनापुर कहां है, दिल्ली में, मेरठ से आगे, मेरठ से आगे जाएंगे तो हस्तिनापुर आता है। ये भरत वंश जो है चलता आ रहा, अब पूर्व वंश है भरत वंश पे आ गए, वही वंश चलता आ रहा है। और भरत वंश के अंदर फिर राजा होते हैं समरण, पत्नी होती है तप्ती, पुत्र होते हैं कुरु, इनसे के पौरव वंश है। कुरु के पुत्र है प्रतीक, पत्नी है सुनंदा, उनके तीन पुत्र होते हैं देवापी, शांतनु और भाई। अब शांतनु से वंश चल रहा, शांतनु ने क्या भोग विलास किया, सत्यपति के आकर्षित हो गए, हुए कि नहीं। पुत्र है गंगा से देवव्रत, कोई बात नहीं, मुझे अभी मेरा जो है समय अभी जो है नहीं आया है, मुझे और एंजॉय करना, आई वॉन्ट टू एंजॉय करो। सत्यवती को समझाया, सत्यवती के पिता ने शर्त रख दी, क्या शर्त रखी, पहले एक शर्त रखी कि इसके औरत से जो संतान होगी वही जो है राज्य का वारिस होगा। फिर दिमाग में बात है, जो देवव्रत है इसने विवाह किया तो इसकी संतान जो है हिस्सा मांगेगी, उससे कैसे छुटकारा पाए। तो देवव्रत जब मनाने गए थे तब उन्होंने कहा, देवव्रत ने कहा मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा, जो प्रतिज्ञा बड़ी कठोर थी, इसलिए उस प्रतिज्ञा को कहा जाता है भीष्म प्रतिज्ञा, क्योंकि भीष्म प्रतिज्ञा करी थी इसलिए देवव्रत का नाम जो है भीष्म पर है। तो अब देखिएगा कि एक के बाद एक जो है सब भोग विलास की परंपरा चली आ रही है, मर्यादा नहीं है कहीं। सत्यवती से पुत्र होते हैं चित्रांगद और विचित्रवीर, विचित्रवीर अभी कुमारी है तो भोग विलास में रहता है, विवाह कौन करे, चैंबर में जाएगा तो फेल हो जाएगा। तो पैसा माता पिता पसंद कम करते थे, स्वयंवर हुआ करते थे, पिता स्वयंवर भी हुआ था ना, हुआ था कि नहीं हुआ, स्वयंवर हुआ करते थे, स्वयंवर में जाएगा तो बाकी राजाओं के समक्ष जो है फेल हो जाएगा, पति को ला नहीं पाएगा। तो देवव्रत ने जो है माता से प्रण किया कि मैं इसके लिए विवाह योग्य कन्याएं लेके आऊंगा, और तीन कन्याएं काशी राज के स्वयंवर से उठा के आए, हम अंबा अमित और अंबालिका। अम्मा ने कहा कि मैं शाहरुख को बच चुकी हूं, मुझे उसके पास भेज दीजिएगा, मैं यहां विवाह नहीं कर सकती। तो भीष्म जो है उसको शाहरुख के पास भेज दिया। शाल नरेश, शाल देश जो है आज का अलवा है, उसने रिफ्यूज कर दिया कि मैं आपको नहीं रखूंगा, आप दूसरे के द्वारा हरी जा चुकी हो, इसलिए मैं तुम्हें पत्नी का सम्मान नहीं दे सकता, तुम्हें पत्नी नहीं बना सकता। अब अम्बा जो है वापस आई, आप मुझे पत्नी स्वीकार कर लीजिए। पूरे कथा है, परशुराम जी से युद्ध हुआ, शिव जी से युद्ध हुआ, बहुत सारी बातें हुई, अम्बा ने तपस्या करी, अगले जन्म में शिखंडी बनके जन्म। अब आती अंबिका और अंबालिका, विचित्र वीर भोग विलास में इतना रत था कि वो उनसे संतान उत्पन्न नहीं कर सका, उसके पहले मर गया। ये जो चंद्र वंश है इसके अंदर जो सारी सूरी चली आ रही है वो भोग विलास की। अब यहां चर्चा आ रही है कि सोम की उत्पत्ति हो रही है। तीन पुत्र हुए इसके, आत्री और अंशीय, ठीक है जी। ब्रह्मा जी का पुत्र है आत्री, स्नान करने गए हुए हैं। पत्नी अनसूया जो है वो बड़ी ही पतिव्रता है और तपस्विनी है, इससे भी जो है देवताओं को खतरा है, निरस बहुत जल्दी डर जाते हैं, एकदम तुरंत डर जाते हैं कि हमें हमारी सीट से कोई हिला ना दे, पद प्रतिष्ठा हमारी ना चली जाए, बस इसी के लिए। अब वो टेंशन में क्या किया जाए। जब भी देवता लोग जो है कष्ट में होते हैं, दुखी होते हैं, तो ब्रह्मा जी के पास आ गया। कब भी देवता योग ले लीजिए, सतयुग ले लीजिए, बाबा ले लीजिए, दौड़ होगी ब्रह्मा जी तक होती है। ब्रह्मा जी तक गए, ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा ठीक है भाई, तुम्हारे लिए कुछ करते हैं। तब देवताओं के साथ मिलकर उन्होंने जो है शिव जी और भगवान विष्णु से स्तुति करी, प्रार्थना करी, उनसे कहा कि किसी तरीके से जो है उनको थोड़ा सा शांत रखिएगा ताकि हमारी पत्नी ना मिल जाए। अब वो तीनों जो हैं चाहते हैं अत्रि के आश्रय, दीक्षांत ही स्वागत होता है। अत्रि मुनि स्नान करने गए हुए हैं, अनसूया घर में है, वही मैं आपका इंतजार करूं, तो भोजन कराए, भोग लगी है, हम आपके अतिथि ने हमको भोजन कराया। अनसूया कहती है कि और बात है, मैं भोजन कराती हूं, तो भोजन परोसने के लिए लेके आई, उनको बिठाया, यथावस्थिति में बिठा के भोजन लेके आई। ऐसा है कि हम भोजन तभी ग्रहण करेंगे जब आप वस्त्रहीन होकर हमें भोजन खिलाएंगे। टेस्ट है, टेस्ट है कि वस्त्रहीन होकर आप निर्वस्त्र होंगी, कोई वस्त्र नहीं पहना होगा, हमें भोजन कराएंगे। टेस्ट चल रहा है, अनसूया परेशान है, अगर वस्त्रहीन होती हूं तो एक दोष हो जाएगा, भोजन लेकर आती हूं तो भी दोष हो जाएगा, करो तो क्या करो। तो अत्रि मुनि का ध्यान करती है, भगवान का ध्यान करती है, अत्रि मुनि का ध्यान करती है। ध्यान करने के बाद बड़ी हिम्मत करके, मन को पक्का करके जो है निर्वस्त्र होकर बाद भोजन कराने के लिए, और जो होगा देखा जाए, जाती है तो जाए, दोष होता है तो हो, देखेंगे क्या। जब अंदर आती है तो क्या देखती है कि तीन शिशु नवजात अभी अभी पैदा हुए, रो रहे हैं। अरे कहां गए, तीन मुनि आए थे वो कहां गए? तो तीन मुनि जो है तीन शिशुओं में परिवर्तित हो गए। अब अनसुया के हृदय में मातृत्व हो जाए, ज्यादा छाती से दूर धारा रहने लगी, गोली उठाया अतिना को दूर किया। इस दौरान अग्नि मुनि आते हैं और देखते हैं भाई ये क्या हुआ कि तीन बेटे मेरे कहां से आ गए, मेरे तो अभी संतान भी नहीं, तीन बेटों की मां बड़े दूध पिला रही कमाल। और जब वो ध्यान लगाते हैं देखते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश हैं तीन पुत्रों के तीन छोटे छोटे शिष्यों के रूप में क्या अवस्था, उनसे कहते हैं अतीनों जो है उसके बाद अनसुया चली जाती है, वस्त्र धारण करती है। अतीनों जो है अपनी तो फॉर्म में ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि वर्मा। अत्री मुनि कहते हैं अनसुया से तुम वर्मा भाई खेल तो तुमने ही खेला है, तुम्हारे पास ही तो आए थे, तुम्हें तो खिलाया है, पर मांगो क्या मांगती हो। अनसुया कहते हैं कि मैं चाहती हूं कि आप तीनों मुझे पुत्र के रूप में रहें, तीनों मेरे पुत्र के रूप में बने। तो हम पहले तपस्या करी होगी जिससे कि देवता लोग घबरा रहे हैं। तपस्या का फल ये मिलता है कि तीनों लोग जो है उनके लिए एक रिक्वेस्ट आई है कि आप मेरे पुत्र के रूप में अपने आप को प्रकट करिए। तो भगवान विष्णु जो है वो आते हैं श्री दत्त के रूप में, श्री दत्ता। ब्रह्मा जी आते हैं सोम के रूप में और शिव जी आते हैं चुरभाषा में। ये भी बड़े होते हैं, दत्ता को जो है कहा गया है दत्तात्रेय, दत्ता अर्थात तत् अत्रेय अत्रे मुनि के दत्तात्रेय। दत्त का मतलब होता है देने वाला, सब कुछ देने वाला। चंद्रमा जो है सोम से कहते हैं कि माता जी अब मैं जाना चाहता हूं, मैं चंद्र लोग आकाश में रहूंगा जहां से मैं हमेशा आपके साथ हूं, हमेशा आपके साथ हूं, आप हर समय जो है मुझे देखना है। शिव जी कहते हैं कि मैं जाना चाहता हूं, तपस्या तो करना चाहता हूं, दुर्वासा मुनि जरूर से शिव जी चले। दोनों जाति वाले कहते गए कि दत्तात्रेय जो है भगवान विष्णु हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपके साथ और ये हम तीनों को रिप्रेजेंट करेंगे, इसलिए इसको दत्तात्रेय भी बोलते हैं। दत्तात्रेय मतलब तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस नाम से मुझे कहा। तो यहां पर जो है चर्चा आ रही है कि आज की तारीख में जिसको हम मंडे कहते हैं, मंडे मंडे क्या है, सोमवार, सोम कौन है, चंद्रमा जो है उसकी किरणें बहुत शीतल है, स्निग्ध सूदी। अब गर्मी का मौसम है, सूर्य देव के प्रकोप से गर्मी से दस्त पस्त हो गए, जब आप अंधेरे में आते हो और खुले में आकर बैठते हो सूर्य की शीतल किरणें आपको शांति प्रदान करती हैं। पर एक समस्या है, वो सूर्य अलग है कि चंद्रमा को अपनी कलाओं से गुजरना पड़ता है, इसीलिए जो है शुक्ल पक्ष आता है और चंद्र पक्ष, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष में जो है चंद्रमा पड़ता जाता है, पड़ता जाता है तो पूर्णिमा आती है, और कृष्ण पक्ष में जो है चंद्रमा घटता जाता है तो अमावस आती है। जब चंद्रमा पड़ता है तो उसका आपने कभी एनवायरमेंट पर इफेक्ट नोट किया, साइंस पढ़े लोग जानते हैं
टाइडल वेव्स।
टाइडल वेव्स क्या है? समुद्र के अंदर जो है लहरों में उछाल होता है, तो शुक्ल पक्ष के अंदर जो है समुद्र की लहरें जो है चंद्रमा को आकर्षित होती है, जैसे जैसे कलाएं बढ़ती जाती है उसमें उछाल आता है, और कृष्ण पक्ष में जो है समुद्र को उछाल करता है आस्था आस्था शांत होता है। चंद्रमा की कितनी पत्नियां थी? 27। झगड़ा किसके पर किसके लिए हुआ था? रोहिणी। और ये जो 27 वाइफ्स हैं चंद्रमा की, ये 27 नक्षत्र रिप्रेजेंट है। अहोरा पढ़ेंगे थोड़ा, मीन्स हॉरोस्कोप देखेंगे, ज्योतिष देखेंगे, तो 27 नक्षत्र 9 ग्रह हैं, 27 नक्षत्र हैं। तो ऐसे जो है एक एक ग्रह जो है वो नक्षत्रों को कंट्रोल करते हैं। पर एक बहुत लंबी चर्चा है, 9 विषय है आज इतना ही शेष हुए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण श्री गोपाल की जय। मंदिर
हुआ। देखो मैंने